का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी परख का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना, जिज्जी, मौसी कह रही थी, लड़की को ठीक से खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? एकदम सूखा छुआरा हो रही है। नहीं तो इस उम्र में लड़कियां कैसी गदराए आम की सी होती हैं। अब खाना तो जो हम सब खा रही हैं, वही सीमा भी खा रही है, अम्मा ने उसास भरकर कहा। पर उसके शरीर को लगता ही नहीं है तो हम क्या करें? एक तो उसकी नौकरी भी ऐसी जानलेवा है, स्कूटी पर जाती है, सर्दी गर्मी बरसात सभी झेलना पड़ता है। तभी ना उसका रंग ऐसा काला पड़ गया है। मेरी मानो तो उसकी नौकरी छुड़वा दो। नौकरी कैसे छुड़वा दूं? ये जो दो चार ढंग के कपड़े उसके बदन पर नजर आ रहे हैं, उस नौकरी की बदौलत ही तो हैं। क्यों, दोनों भाई मिलकर बहन को पहना ओढ़ा नहीं सकते क्या? खाना खिला रहे हैं यही बहुत है। क्या बात करती हो जीजी? अब तुमसे घर की बात मैं क्या कहूं शकुन? बहुएं तो खैर पराए घर से ही आती हैं, पर जब अपने पेट जाए एकदम परायों का सा व्यवहार करने लगते हैं तब बड़ा जी दुखता है। सोकर उठी तो अच्छी खासी शाम हो रही थी। अम्मा बरामदे में बैठी माला फेर रही थी, किचन में मौसी शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। मैंने भीतर जाकर कहा, मौसी एक आध गैस खाली है क्या? मैं अपनी चाय बना लूंगी। तू क्यों बनाएगी लाडो, मैं हूं ना। सीमा तू वो वाली क्रीम क्यों नहीं लगाती? कौन सी? मेरी नंद की बेटी है ना कुमुद, तेरी तरह ही सांवली थी, बस 6 महीने वह क्रीम लगाई होगी, एकदम मैदे की लोई की तरह निकल आई है। आजकल मैदे की लोई का फैशन नहीं रहा ना, अब गदराए आमों का जमाना है, अब तो लोग नकद नारायण देखते हैं। यह कौन सी नई बात है, दान दहेज तो जमाने से चला आ रहा है, पर आजकल लोगों को परमानेंट दहेज चाहिए, यानी कि नौकरी। तू भी तो नौकरी कर रही है, फिर तेरी नौकरी पर कोई रीझा क्यों नहीं अब तक? रीझने लायक नौकरी तो हो मौसी, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, जितने पर दस्तखत करती हूँ उसका 3/4 हाथ में आता है। तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मिली भी थी, पर शुरुआती पोस्टिंग अक्सर गांव में मिलती है और मुझे कोई अकेले भेजने को तैयार ना था। अच्छा हुआ कि उसी समय मौसा जी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी और यह अप्रिय विषय समाप्त हो गया। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर बाहर निकली तो देखा रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। फौरन वहां पहुंच गई। मौसी क्या बना रही हो, पूरा घर महक रहा है। ये सीमा तुझे दुहाजू चलेगा? मौसी तुम रात भर क्या मेरे बारे में ही सोचती रही थी? सच कह रही है तू, मुझे रात भर नींद नहीं आई। देख सीमा अब तू 28 पार कर चुकी है, इस उम्र का कुंवारा दूल्हा अब कहां मिलेगा? 26 से ऊपर तो कुंवारा लड़का मिलना मुश्किल है। मुझे चुप देखकर बोली, देख बेटा अपनी उम्र ज्यादा हो जाए तो थोड़े समझौते करने पड़ते हैं। समझौते हमेशा हम ही क्यों करें? दूसरी शादी होती है तो वे लोग ना रंग रूप देखते हैं ना दान दहेज मांगते हैं। बच्चे हैं तो, पर नानी के पास है, तुम नहीं चाहोगी तो नहीं आएंगे। मेरे रिश्ते का देवर है, कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, 2 बच्चे हैं, अभी 6 महीने पहले ही पत्नी का देहांत हुआ है, पीलिया हो गया था। मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा था, पर देखा कि दोपहर लंच पर साहब बहादुर आमंत्रित हैं। परिचय के बाद उन्होंने मुझे इस तरह ऊपर से नीचे तक देखा कि मुझे झुरझुरी हो आई। वहां 10 मिनट बैठना भी मेरे लिए कठिन हो गया। एक्सक्यूज मी कहते हुए मैं उठी और भीतर चली गई। देखा अम्मा दरवाजे से लगी खड़ी है। मेरे पीछे पीछे वह भी कमरे में चली आई। बोली, लड़का अच्छा है ना, तुम्हें यह लड़का नजर आ रहा है?
धीरे बोल भवानी,
अम्मा ने डपट कर कहा। मिन्नी, अब तू भी तो 16 की नहीं रह गई है, तेरे लायक ही तो ढूंढना पड़ेगा। अम्मा, मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम इस पुण्य कार्य के लिए यहाँ आना चाहती हो तो मैं हरगिज ना आती। मुझे यह आदमी जरा भी अच्छा नहीं लगा, कह देती हूँ। अम्मा एकदम भड़क गई। अब तेरे लिए मैं राजकुमार कहाँ से लाऊं? किस बलबूते पर इतना भाव खा रही हो? जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने अपनी बात कह दी बस। तभी मौसी हुलसती हुई कमरे में आई। सीमा, खाना खाकर जल्दी से तैयार हो जाना। अब तैयार किस लिए होना है मौसी, मैं जैसी भी हूं उन्होंने देख तो लिया है। देख तो लिया है री, पर मैं सोच रही थी कि तुम लोग थोड़ा साथ में घूम फिर लो, एक दूसरे को समझ लो। उसने हाँ कर दी है तभी मैंने घूमने का प्रस्ताव रखा है। उनके हाँ कहने से क्या होता है मौसी, कुछ मेरी। मैं अपनी बात पूरी तरह कह भी नहीं पाई थी कि अम्मा ने पीछे से मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मौसी और अम्मा दोनों मुग्ध भाव से मुझे निहार रही थी। सब लोग हमें गेट तक छोड़ने आए, मौसा जी भी। ऐसा लगा जैसे मैं आज ही विदा हो रही हूँ। अम्मा की डबडबाई आंखें दूर तक मेरा पीछा करती रही। ठीक से बैठो, बगल से आवाज आई। दरवाजे से चिपकी जा रही हो, गिर गिरा गई तो भाभी मुझे खा जाएंगी। क्यों, गाड़ी का लॉक ठीक नहीं है क्या? लॉक वॉक सब ठीक है, पर ढंग से बैठने में हर्ज क्या है? रास्ते के दोनों ओर खेत ही खेत नजर आ रहे थे। अब आगे, मॉल क्या शहर से बहुत दूर है? बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ये तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए शहर से बाहर ले आया, सोचा थोड़ी लॉन्ग ड्राइव हो जाए। इतनी धूप में तो कौन सा पैदल चल रही हो, गाड़ी में बैठी हो, जरा आसपास के नजारों का आनंद लो। देखिए, मैं छोटी शहर की लड़की हूँ, मैंने खेत खलिहान जंगल पहाड़ खूब देखे हैं, बस वह मॉल दिखा दीजिए। वैसे भी इतनी धूप में घूमने में कोई मजा नहीं है, गाड़ी में एसी लगा होता तो और बात थी। यह तीर निशाने पर लगा। मौका मिलते ही उन्होंने यू टर्न लिया और गाड़ी शहर की ओर मोड़ ली। चाय वाय तो नहीं पीनी है? ना, अभी खाना खाकर ही तो आ रहे हैं। तुम तो बस मॉल देखोगी, है ना? जाहिर था वह नाराज हो गए थे बेचारे। इसके बाद उन्होंने रास्ते भर कोई बात नहीं की, सीधे मॉल पर लाकर ही गाड़ी रोकी। अंडरग्राउंड में गाड़ी पार्क करके हम ऊपर आए तो लगा जैसे सारा शहर ही यहाँ इकट्ठा हो गया है। बहुत भीड़ है, आज संडे है ना, लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं। कुछ खरीदना है? ना, बस देखना है। चलो ऊपर चलते हैं। वे मुझे हाथ पकड़कर एक्सेलेटर पे ले गए। इसे एक्सेलेटर कहते हैं, मालूम है, मैंने हौले से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। बड़ी दीदी मुंबई में है, वहां अक्सर जाती रहती हूँ। फिर तो मॉल भी देखे होंगे, मुंबई में तो दर्जनों हैं। फिर यहाँ आने की क्या अर्जेंसी थी? मौसी की इच्छा थी। और सुनिए, मैं एक्सेलेटर से नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। रही ना वही छोटे शहर वाली। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। हम लोग सीढ़ियों से चलते हैं ना, मैंने धीरे से हाथ छुड़ाते हुए कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पागल, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मर जाएंगे हम। चलो लिफ्ट से चलते हैं। यहाँ लंबी लाइन थी। बड़ी देर बाद नंबर आया। जब भी लिफ्ट रुकती, मैं उतरने का उपक्रम करती और वे मुझे रोक लेते। आखिरकार सबसे आखिरी मंजिल पर हम बाहर निकले। यहाँ एकदम शांत था। सारा शोर शराबा, सारी भीड़ नीचे छूट गई थी। ये मल्टीप्लेक्स है, यहाँ चार पिक्चरें एक साथ चलती हैं। खैर, तुमने तो मुंबई में देखा ही होगा। कौन सी पिक्चर देखोगी? हे भगवान, इस शख्स के साथ 3 घंटे अंधेरे हॉल में बैठना होगा? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी तो देर है, आओ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। स्टॉल की ओर जाते हुए उन्होंने फिर मेरा हाथ थाम लिया। मैंने धीरे से छुड़ा लिया, पर इस बार वह चुप नहीं रह सके। तुम तो एकदम टच मी नॉट हुई जा रही हो। तो आपने क्या समझा था, इजीली अवेलेबल हो जाऊंगी? पर प्रकट में मैंने इतना ही कहा, छोटे शहर की हूं ना, उतना बोल्ड नहीं हो सकी हूं। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मौसी ने पूरा बायोडाटा बताया तो होगा। हाँ 28 कह रही थी, पर 30 समझ लो, क्योंकि लड़की वाले अक्सर 2-4 साल घटाकर ही बताते हैं। तो इतने दिनों तक क्या अनछुई ही रही आई हो? कोई अफेयर नहीं हुआ? मेरा पूरा शरीर रोष से जैसे सुलग उठा, पर मैंने संयम से काम लिया और कहा, अफेयर के लिए मौका ही नहीं मिला। घर में माँ का हिटलरी अनुशासन था, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी कोएड में नहीं हुई। अभी जहाँ पढ़ा रही हूँ वहां भी महिला राज ही है। एक हेड क्लर्क है, एक कैशियर, एक गेम्स टीचर और 2 चपरासी, कुल जमा 5 पुरुष हैं। किसी तरह के अफेयर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, तुम जो पिक्चर देखना चाहती हो उसकी टिकट ले लो, मैं अभी आया, उन्होंने जेब से पर्स निकालते हुए कहा। पैसे हैं मेरे पास, मैंने अपने पर्स झुलाते हुए कहा। सोच लो, मल्टीप्लेक्स का टिकट है, उन्होंने कहा। जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। उन्होंने फिर बहस नहीं की, सीधे अपने गंतव्य की ओर चले गए। वे फॉर मैन ओनली में दाखिल हुए ही थे कि लिफ्ट आकर रुकी। इक्का दुक्का लोगों के उतरते ही मैं पलक झपकते ही उस पर सवार हो गई और सीधे भूतल पर जाकर उतरी। उतरते ही बदहवास सी दौड़ती हुई बाहर आई। मॉल से आते हुए मैंने देखा कि बाहर कतारबद्ध ऑटो रिक्शा खड़े हुए थे। उन्हीं में से एक में मैं धम्म से जाकर बैठ गई। मौसी का पता मुंह जवानी याद था। ड्राइवर को बताने के बाद मैंने पीछे सिर टिकाकर जो आंख बंद की, घर पहुंचकर ही खोली। सब लोग बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर मौसी मुझसे भी ज्यादा बदहवास हो गई। अरे तू रिक्शे से आई है, वह भी अकेली? प्रवीण कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई क्या? और तेरे चेहरे पर ये हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अरे उसे सांस तो लेने दो, एकदम शुरू हो जाती हो, मौसा जी ने डांट लगाई। तब जाकर मौसी चुप हुई। बैठो बेटा, थोड़ा सुस्ता लो, फिर इत्मीनान से बताना, मौसा जी ने प्यार से कहा। दरअसल मौसा जी, वो क्या हुआ कि मैं एक दुकान पर खड़ी कुछ देख रही थी, पता ही नहीं चला भीड़ में हम लोग कब छिटक गए। अरे तो तेरे पास मोबाइल था ना? पर मौसी, उनका नंबर तो मुझे मालूम नहीं था ना। थोड़ी देर मैंने ढूंढने की कोशिश की, फिर सोचा इससे तो घर लौट जाना ही ठीक। बहुत अच्छा किया बेटा, मौसा जी बोले, पर यह बताओ ये मॉल में जाने का आइडिया किसका था? मौसी ने सिर झुका लिया। कमाल करती हो तुम भी, पता नहीं था कि आज संडे है, पूरा शहर वहां टूट पड़ता है। वही घूमेंगे, वही शॉपिंग करेंगे, वही खाएंगे और पिक्चर देखकर घर लौटेंगे। अजीब पागलपन सवार है लोगों पर। शकुन मेरा फोन देना जरा, प्रवीण को बता दूं कि वह घर आ गई है, नहीं तो बेचारा वहां हलकान होता रहेगा। मैं कमरे में चली आई और कपड़े बदल कर लेट गई। मन में अजीब सी धुकधुकी हो रही थी। मैंने एक एडवेंचर तो कर लिया था, पर अभी उसका परिणाम आना शेष था। मुझे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, एक घंटे के भीतर ही मौसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। जीजी जरा बाहर आना। अम्मा कमरे में लौट कर आई तो चेहरा बेहद उतरा हुआ था। आते ही बोली, लगता है तू मुझे चैन से मरने नहीं देगी। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, लड़के ने मना कर दिया, कह रहा था लड़की निपट गवार और बौड़म है, कहीं से नहीं लगती कि एमए पास है, ना उठने बैठने का शऊर है ना बात करने का, पढ़ लिख कर यही कमाया है तुमने कि लोग तुम्हें गवार कहें। माँ अनवरत बोले चली जा रही थी कि अचानक उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, जहां हताशा का कोई चिन्ह नहीं था। चिढ़कर बोली, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना, तुम्हारी तो मन की हो गई है, इतना अच्छा घर वर मिला था, पर भाग्य में हो तब तो। अम्मा का दुख देखकर दुख जरूर हो रहा था, पर अम्मा सच कह रही थी, मेरी तो मन की हो गई थी। गाथा में अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी परख का दूसरा व अंतिम भाग। इसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।
गाथा रूप वही रूप नया।